नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाजत दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। यह फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद यह निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। मस्टलविन में एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। ग्रुप में चीन 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।